प्यारे बच्चों, टार्जन की पिछली कैसेट कहानी में आपने सुना था,
मैं जंगल ही में पैदा हुआ था, मेरी माँ एक गोरिल्ला थी, बाप को मैंने कभी नहीं देखा।
इतना कहकर टार्जन गुस्से में वहां से चल दिया। बच्चों, टार्जन अगर चाहता तो बड़ी आसानी से ये साबित कर सकता था कि वो नवाब जॉन क्लेटन का बेटा है और उसकी जायदाद का 100% हकदार। लेकिन उसे दौलत से कोई दिलचस्पी न थी, वो तो सिर्फ जैन से शादी करना चाहता था। लेकिन जैन अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी, वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। उसे बहुत दुख हुआ और वो जैन को भूल जाने की कोशिश में फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस आ गया, जहां उसका दोस्त डारनोट रहता था। डारनोट ने यह किस्सा सुना तो उसे बेहद सदमा हुआ। उसने कहा,
टार्जन मेरे दोस्त, तुमने जैन को बताया नहीं कि असली नवाब तुम खुद हो और तुम्हारा चचाजाद भाई विलियम इस खिताब का हर किस हकदार नहीं।
मुझे नवाबी नहीं चाहिए मेरे
कैसी
दोस्त।
कैसी हिमाकत की बातें करते हो तुम। मैं आसानी से साबित कर सकता हूँ कि तुम ही असल नवाब हो। मेरे पास वो डायरी और उंगलियों के निशानात मौजूद हैं जिनसे तुम्हारे खानदानी हालात का पता चलता है।
अब इस किस्से को जाने दो मेरे दोस्त, और मुझे कोई ऐसा काम दिलाओ जिसमें मसरूफ होकर मैं ये तमाम बातें भूल जाऊं, क्योंकि अब मैं इंग्लिस्तान जाना नहीं चाहता।
ओके ओके, आई विल ट्राई यू।
और डारनोट ने दोस्ती का हक अदा करते हुए टार्जन की मुलाकात फ्रांस के खुफिया पुलिस के आला अफसर से करा दी। उसने टार्जन के कारनामे सुनकर उसे एक ऐसी मुहिम पर रवाना कर दिया जिसमें कदम कदम पर खतरात थे। लेकिन यही खतरे तो टार्जन को पसंद थे। उसे आराम और चैन की जिंदगी से नफरत थी। वो जंगल की खौफनाक दुनिया का बादशाह था और जंगल के तमाम जानवरों पर उसकी हुकूमत थी। शेर, चीते, जंगली भैंसे, गेंडे और रीछ सब उसकी ताकत का लोहा मानते थे। किसी में उसका मुकाबला करने की बिल्कुल जुरत न थी। और अब जंगल का यही बादशाह फ्रांस की खुफिया पुलिस का एक रुकन बनकर शुमाली अफ्रीका के एक शहर सैयदी अब्बास की तरफ जा रहा था। टार्जन को एक फ्रांसीसी फौजी लेफ्टिनेंट की निगरानी के लिए भेजा गया था, और उस लेफ्टिनेंट का नाम था जर्नूस। जर्नूस हाल ही में फ्रांसीसी फौज के साथ सैयदी अब्बास आया था। जर्नूस को फ्रांस के चंद ऐसे फौजी राज मालूम हो गए थे जो दुश्मन मुल्क हासिल करना चाहता था, और जब जर्नूस को ये राज मालूम हुए तो उसने सोचा कि वो उन्हें किसी मुल्क के हाथ फरोख्त करके दौलत कमाए। मगर फ्रांस की खुफिया पुलिस को जल्द ही इसका इल्म हो गया और खुफिया पुलिस के आला अफसरों ने टार्जन की खिदमत हासिल कर दी और टार्जन को सैयदी अब्बास जाने का हुक्म दे दिया। बच्चों, उस जमाने में सैयदी अब्बास फ्रांसीसियों के कब्जे में था और वहां उन्होंने अपनी फौज का हेडक्वार्टर बना रखा था। और बच्चों, अगले रोज टार्जन एक अमरीकी शिकारी का भेस बदलकर सैयदी अब्बास पहुंच गया। ये एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी बस्ती थी। यहां अरबों के अलावा फ्रांसीसी भी आबाद थे, मगर दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। यहीं फ्रांसीसी फौज का दफ्तर था। टार्जन ने अंदर जाकर फौजी अफसर को एक खत दिया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि इस शख्स की हर तरह से मदद की जाए। फौजी अफसर ने टार्जन को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि यह लंबा तड़ंगा देव जैसा शख्स जरूर किसी खास मुहिम पर आया है। लेकिन किस खास मुहिम पर, इसका इशारा खत में नहीं था। टार्जन को यहां रहते हुए एक महीना ही हुआ था कि अचानक एक रोज टार्जन को पता चला कि फौजी हेडक्वार्टर से जर्नूस की तब्दीली का हुक्म आया है और अब उसे जुनूब की तरफ एक और मकाम बूसादी भेजा जा रहा है। जर्नूस के साथ सिपाहियों की एक कंपनी और तीन अफसर भी भेजे गए थे और उन्हीं में एक कैप्टन जेराड भी था जिससे टार्जन की दोस्ती हो गई थी। और चूंकि जेराड भी शिकार से दिलचस्पी रखता था इसलिए उसने टार्जन को भी बूसादी चलने की दावत दे दी। तो बच्चों, टार्जन तो खुद ही वहां जाने का बहाना तलाश कर रहा था, फौरन दावत कबूल कर ली। बूसादी जाने के लिए लकोदकसेरा में 3 रोज तक सफर करना पड़ता था। सफर करते करते जर्नूस और उसके साथी सैयदी ईशिया पहुंचे। सैयदी ईशिया में बड़ी रौनक थी। उन दिनों यहां बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। अरब सौदागर और उनके नौकर जा बजा अपना सामान फैलाए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। खरीदार और ग्राहक माल की कीमत तय करने के लिए घंटों चख चख करते और बाज औकात तो मार कुटाई तक नौबत पहुंच जाती। टार्जन को ये हंगामे इतने दिलचस्प मालूम हुए कि वो एक दिन के लिए यहां ठहर गया और जर्नूस के साथ नहीं गया। टार्जन ने बाजार में एक खूबसूरत अरबी घोड़ा देखा
जिसके गिर्द बहुत से लोग जमा थे और बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे थे। टार्जन ने अपनी जेब टटोली, उसमें इतने पैसे थे कि वो यह कीमती घोड़ा खरीद ले, और टार्जन ने सबसे ज्यादा बोली देकर वो घोड़ा खरीद लिया।
लीजिए साहब, आज से इस घोड़े के मालिक आप।
ओहो, भाई तुम तो फ्रांसीसी भी जानते हो।
जी हाँ साहब, बस काम चला लेता हूँ आप जैसे लोगों के साथ।
अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है?
जी साहब, मुझे अब्दुल कहते हैं।
अच्छा अब्दुल, ये बताओ ये घोड़ा तुम्हारा है?
जी नहीं साहब, मैं एक सौदागर का नौकर हूँ, उनका नाम शेख खजर बिन हिजर है। वो शहर जुल्फा से आए हैं, बहुत मालदार ताजर हैं साहब, और बड़ी रवानी से फ्रांसीसी बोलते हैं। लीजिए, वो आ गए मेरे मालिक। आइए आइए मेरे आका, आपका घोड़ा इन साहब ने खरीदा है।
खुश आमदेद बिरादर, खुश आमदेद।
दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर टार्जन ने कहवा पीने की दावत दी, जो शेख साहब ने खुशी से मंजूर कर ली। और फिर जब ये तीनों आदमियों और जानवरों के हुजूम से गुजरते हुए कहवा खाने की तरफ रवाना हुए, तो अचानक अब्दुल ने टार्जन से घबराई हुई आवाज में कहा,
जनाब जनाब, एक शख्स हमारे पीछे पीछे आ रहा है,
कोई बदमाश मालूम होता है।
कहाँ भाई कहाँ? मुझे तो कोई नजर नहीं आता।
वो जनाब, वो देखिए, ऊँटों के पीछे पीछे छुपता हुआ आ रहा है।
अरे वो तो कोई अरब है, उससे भला हमारा पीछा करने की क्या जरूरत है?
उस शख्स की नीयत खराब मालूम होती है जनाब, उसे शक हो गया है कि आपके पास माल है।
अच्छा भाई, देखा जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरी जेब बिल्कुल खाली है। चलो आओ मेरे साथ।
कहवा पीने के बाद शेख खजर बिन हिजर ने टार्जन से रुखसत होते वक्त जुल्फा आने की दावत दी, जो टार्जन ने बखुशी मंजूर करते हुए कहा,
शेख साहब अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दिन अब्दुल को मेरे साथ रहने दें, ताकि इस कस्बे को मैं अच्छी तरह से देख लूं।
जरूर जरूर, बखुशी आप इसे अपने साथ रखें। ये लड़का ईमानदार, होशियार और वफादार है, और सैयदी ईशिया के कस्बे से अच्छी तरह वाकिफ भी है।
रात को खाने के बाद जब टार्जन अब्दुल को लेकर एक कहवा खाने में दाखिल हुआ, तो एक लड़की डांस कर रही थी और लोग कहवे की प्याली आगे रखे हुए डांस देखने में महक थे। टार्जन के दाखिल होते ही लोगों की नजरें उस पर चल गई, उनके चेहरों पर गुस्से के आसार थे। ये लोग अपने कहवा खानों में अजनबी लोगों का आना पसंद नहीं करते थे। कहवा खाने के मुलाजिम ने कहवे के दो प्याले टार्जन और अब्दुल के सामने लाकर रख दिए और डांस करने वाली लड़की को इशारा करते हुए चला गया। यकायक डांस रुक गया। फिर उस लड़की के करीब एक आदमी ने आकर कुछ कहा और लड़की ने गर्दन यूं हिलाई जैसे वो उनसे कोई इकरार कर रही हो। ये देखते ही अब्दुल ने टार्जन से कहा,
जनाब जनाब, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए, वरना ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर आप पर हमला कर देंगे। जी हाँ, मैं इनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
तुम फिक्र ना करो मेरे दोस्त, ये लोग मेरा बाल भी खतक नहीं कर सकते। तुम्हारी दुआ से मैं इन जैसे 36 के लिए काफी हूँ।
ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि डांस दोबारा शुरू हो गया और लड़की कुछ घबराई हुई सी होले होले टार्जन के करीब आई और फ्रांसीसी जबान में कहने लगी,
आप यहाँ से बड़ा चले जाइए, आपकी जगह हाजिर में है, वो आप पर हमला करते हैं।
अरे अरे जनाब, आप हंस रहे हैं, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी खतरे की बू सूंघ रहा हूँ, हमें यहाँ से चल देना चाहिए, आप अकेले इतने आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकते।
चुपचाप बैठे रहो अब्दुल, मैं इन सबके लिए अकेला ही काफी हूँ।
ये तो मुझे अंदाजा है जनाब कि आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन वो देखिए, वो शख्स देखिए जनाब, ये शख्स जरूर लड़ाई के इरादे से इधर आ रहा है, और मुझे यकीन है कि ये तनहा नहीं है। जी हाँ, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी लड़ाई में इसी का साथ देगा।
अब्दुल, इस हफ्शी से पूछो कि ये क्या चाहता है।
जनाब, ये हफ्शी आपको बुरा भला कह रहा है, कहता है कि आपने डांस करने वाली लड़की की तौहीन की है, और ये कि वो इस शख्स की लड़की है, इसलिए वो इस तौहीन का बदला लेना चाहता है।
अब्दुल, इस शख्स को समझाओ कि हमने किसी की तौहीन नहीं की और ना ही इस इरादे से हम यहाँ आए हैं।
अब्दुल ने इन अल्फाज का तर्जुमा उस हफ्शी को बताया, जिसके जवाब में उस हफ्शी ने ऐसी बात कही कि कहवा खाने में बैठा हुआ हर शख्स कह लगाने लगा। टार्जन का चेहरा गुस्से से आग हो गया।
वो तेजी से कुर्सी से उठा और बिजली की तरह तड़प कर हबशी को अपने मजबूत हाथों में यूं ऊपर उठा लिया जैसे वो कागज का बना हुआ हो। फिर उसने उसको अपने सर से ऊंचा करके इस जोर से लकड़ी के चबूतरे पर फेंका कि चबूतरा को मार के सीखी। हर शख्स टार्जन की तरफ वैश्याना अंदाज में चीखता हुआ लपका। टार्जन के पास कोई हथियार नहीं था। उसने इत्मीनान से अपने दोनों हाथों से दो मेजें उठाई और हमला आवरों की तरफ पूरी ताकत से खींच मारी। एक धमाका हुआ और फिर कई चीखों की आवाजें सुनाई दी। और इससे पहले कि लोग कैबा खाने का दरवाजा बंद करते, टार्जन अब्दुल का हाथ पकड़कर कैबा खाने के बाहर निकल गया। टार्जन थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक टार्जन के बाजू पर नर्म नर्म उंगलियां कड़ गई। ये वही डांस करने वाली लड़की थी।
देर न कीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए, आइए चले कीजिए, इस जीने से ऊपर चढ़ जाइए। देखिए वक्त थोड़ा है और इस कमरे की खिड़की कैबा खाने की पीछे खुल गई है। आप जल्दी से इस खिड़की से बाहर कूद जाइए, वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। अरे अरे आप सोच क्या रहे हैं? वो बदमाश आपको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएंगे, फिर वो मुझे भी आपको बचाने के जुर्म में हला कर देंगे।
घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में कोई रस्सी है?
रस्सी तो कोई भी नहीं।
अच्छा ये दुपट्टे उठाओ और ये बिस्तर की चादरें भी। अब्दुल जल्दी जल्दी एक दूसरे में बांधो, जल्दी करो जल्दी। हाँ ऐसे, अब तुम ऐसा करो अब्दुल, इस चादर का ये सिरा इस खिड़की से बांधो, जल्दी करो जल्दी, और चादर को पकड़े पकड़े नीचे उतर जाओ। शाबाश। और सुनो, नीचे पहुंच जाओ तो सीटी बजा देना, समझे?
अभी अब्दुल नीचे पहुंचा ही था कि अचानक दरवाजा टूटा और कई आदमी अंदर दाखिल हो गए। लड़की की हलक से भयानक चीख निकली और वो बेहोश होकर टार्जन के पासुओं में आ रही। टार्जन ने एक हाथ से लड़की को उठाया और बंदर की तरह खिड़की से छलांग लगाकर नीचे कूद गया। टार्जन बेहोश लड़की को कंधों पर उठाए अब्दुल के साथ अपनी सराय पहुंचा तो रात खासी हो चुकी थी। टार्जन का ख्याल था कि हमला आवर सराय तक उनका पीछा करेंगे, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उन्हें उनका पीछा करने की जरूरत नहीं हुई। टार्जन सराय वाले को गर्म गर्म कहवा बनाने के लिए कहकर आया तो लड़की होश में आ चुकी थी और फटी फटी निगाहों से टार्जन को देख रही थी। टार्जन को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। उसने टार्जन से कहा,
खुदा का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। अरे आपको चोट तो नहीं लगी?
नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं। हाँ मैं तुम्हारे बारे में जरूर फिक्रमंद हूँ कि वो लोग खामखा तुम्हारे दुश्मन बन गए। मेरा ख्याल है कि अब तुम अपने कहवा खाने में वापस नहीं जा सकती, बल्कि तुम्हारा तो इस कस्बे में रहना ही मुश्किल है।
अब ठीक कहते, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। उन्होंने मुझे कैद कर रखा था।
कैद कर रखा था?
जी हाँ, मैं उनकी कैद में थी, बल्कि मैं तो उनकी गुलाम थी। 2 साल हुए चंद बदमाश मुझे यहाँ उठा कर लिया है, कहवा खाने के मालिक के हाथों फरोख्त कर दिया था। ये घर यहाँ से बहुत दूर जुनेब की तरफ है।
अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहो तो मैं मुस्तादी तक तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और वहाँ ऐसे शरीफ आदमियों के सुपुर्द कर दूंगा जो तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचा देंगे।
क्या वाकई? आप कितने रहमदिल इंसान हैं। अगर आप मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दें तो वो आपको बहुत इनाम देंगे। मेरे वालिद अपने कबीले के सरदार और बहुत मादार आदमी हैं।
अच्छा, क्या नाम है उनका?
शेख खिजर।
शेख खिजर बिन हिजर, वो तुम्हारे वालिद हैं? लेकिन वो तो यही है एशिया में। ये अब्दुल उन्हीं का नौका है।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे वालिद यही है। अब मैं आपसे मिल सकूंगी। जनाब आप तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आए हैं। खुदा के लिए मुझे मेरे वालिद के पास ले चलिए।
खामोश। जनाब कुछ लोग सराय के बाहर खड़े बातें कर रहे थे, अभी अभी वापस गए हैं।
क्या बातें कर रहे थे, कुछ सुना तुमने?
जी हाँ जनाब, एक शख्स अपने साथी से कह रहा था कि इस सफेद चमड़ी वाले को हर कीमत पर हलाक करना है। उनका प्रोग्राम यह है कि आपको बूस आदि जाने वाली सड़क पर मार डाला जाए। साहब आखिर ये लोग आपको क्यों मारना चाहते हैं?
मुझे क्या मालूम, मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही उनमें से मैं किसी को जानता हूँ। खैर जो होगा देखा जाएगा, ये लोग मुझ पर आसानी से काबू नहीं पा सकेंगे।
वाकई आपका बिले तारीफ है। आपके बाजू की मजबूती का अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब आपने मुझे बासानी अपने एक बाजू पर उठाकर खिड़की से छलांग लगाई थी।
लेकिन तुम उस वक्त बेहोश थी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खिड़की से छलांग लगाई थी?
कुछ होश था मुझे।
तो ये बात थी। अच्छा सुनो, अब रात काफी बीत चुकी है, तुम उस कमरे में जाकर सो जाओ, हम सुबह सवेरे ही यहां से रवाना हो जाएंगे।
टार्जन मुंह अंधेरे ही उठ गया। उसने देखा लड़की दूसरे कमरे में बेखबर सो रही है, लेकिन अब्दुल नजर नहीं आया। उसने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने बताया कि थोड़ी देर हुई शेख हजर बिन हजर को लेने गए हैं और कह गए हैं कि आप यहीं सराय में इंतजार करें। चौकीदार की यह बात सुनकर टार्जन को इत्मीनान हुआ और वो अपने कमरे में वापस आ गया। लड़की अब भी बेखबर सो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद अब्दुल शेख खजर को साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। शेख खजर के चेहरे पर हैरत के आसार थे, क्योंकि अब्दुल ने उसे अभी तक लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था।
मेरे अजीज, खैरियत तो है, बात क्या है? अब्दुल ने तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया।
शेख साहब, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो देखिए सामने वाले कमरे में कौन है।
कहाँ?
वो सामने देखिए।
मेरी बच्ची। मेरी बच्ची तो कहाँ गुम हो गई थी? मैं तुझे ढूंढते पागल हो गया था। ऐ खुदा, तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझ पर बड़ा करम किया कि दो बरस से बिछड़ी बेटी से मिलवा दिया। और तुम मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तुमने तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया। मेरी हर शय तुम्हारे लिए हाजिर है, यहाँ तक की ये अकीब जान भी।
नहीं नहीं शेख साहब, ऐसी बात जुबान से ना निकालिए, ये तो मेरा फर्ज था। बस आप दुआ कीजिए कि जो काम मेरे जिम्मे है उसे जल्द पूरा कर सकूं। इसलिए चाहता हूं कि जल्द से जल्द बूसावी पहुंच जाऊं।
मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि तुम मेरे साथ चलो और चंद दिन मुझे मेजबानी की खिदमत सौंप दो। मेरे इलाके में बहुत घना जंगल है, जहां हाथा खा जाना, तुम वहां बरसों शिकार खेलो तब भी जानवर खत्म ना हो।
अभी ठीक कहते हैं, वहाँ सियारंग का शेर भी है और उतना ही ताकतवर है जितने आप। मेरा मतलब है, वो भी एक ही वार में अपने दुश्मन को दूर फेंक देता है। कभी कभी तो वो पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ जाता है और फिर उसकी गरजदार आवाज से जमीन कांपने लगती है। उसे अभी तक किसी ने हलाक करने की कोशिश ही नहीं की, सभी उससे डरते हैं। क्यों, अभी वो अभी भी जिंदा है ना?
हाँ बेटी, वो अभी तक जिंदा है। चंद रोज पहले वो हमारी घोड़ी को उठा कर ले गया। तो फिर क्या राय है मेरे दोस्त?
दिल तो बहुत चाहता है कि अभी इसी वक्त उस शेर का मुकाबला करूं, लेकिन मजबूर हूं क्योंकि इस वक्त एक बहुत जरूरी काम से बूसावी जा रहा हूं। हाँ, अगर कभी मौका मिला तो जरूर आपके इलाके में आऊंगा।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे मालूम हुआ है कि चंद बदमाश तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कुछ दूर तक मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अकेला पाकर दोबारा वार करे।
टार्जन, अब्दुल शेख खजर और उसकी बेटी के अलावा इस काफिले में चार आदमी और थे जिनके पास राइफलें थी। ये चारों शेख खजर के मुहाफिज थे। इस काफिले में अब्दुल सबसे पीछे पीछे चल रहा था। सब लोग बड़ी खामोशी से घोड़ों पर सवार बूसादी की जानेब बढ़ रहे थे कि अचानक टार्जन के कानों में अब्दुल की आवाज आई।
जनाब, ऐसा मालूम होता है कि कुछ घुड़सवार हमारा पीछा कर रहे हैं।
ठहरो मेरे अजीज, यहीं रुक कर देखते हैं। मेरा ख्याल है ये वही तुम्हारे दुश्मन है।
हाँ, हो सकता है वही हो। शेख साहब, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। खैर, मैं अगले पड़ाव पर रुककर आने वालों का इंतजार करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो आखिर चाहते क्या है। आप लोग अपना सफर जारी रखिए।
नहीं मेरे अजीज, ये हरगिज नहीं होगा कि मैं तुम्हें इन बदमाशों के हवाले करके खुद आगे बढ़ जाऊं। मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम अपने आदमियों में नहीं पहुंच जाते। और ये भी सुनो कि ये लोग दिन की रोशनी में हमला नहीं करेंगे, बल्कि ये रात का इंतजार करेंगे।
रात होते ही टार्जन का काफिला रुक गया। अब पीछा करने वाले इतने नजदीक आ गए थे कि उनके सफेद लबादे और स्याह नकाब साफ नजर आ रहे थे। शेख खजर के मशवरे से टार्जन और दूसरे आदमियों ने एक ऊंची सी चट्टान के पीछे पड़ाव किया और सब ने अपने अपने पिस्तौल और राइफलें संभाल ली। रात की तारीकी का सीना चीरते हुए छह घुड़सवार बराबर आगे बढ़ रहे थे। जब वो उनसे 60-70 गज दूर रह गए तो टार्जन ने गरजती हुई आवाज में कहा,
रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा।
टार्जन की इस आवाज के साथ ही एक फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई टार्जन के सर के ऊपर से गुजर गई। टार्जन ने भी फौरन उसी जाने फायर किया और फिर तो जैसे चारों तरफ गोलियों की बौछार हो गई। शेख खजर, अब्दुल और चारों अरब महाफिज टार्जन की मदद को आ गए और जिधर से शोला लपकता उधर ही फायर झोंक देते। शेख अफसर की बेटी भी पिस्तौल हाथ में लिए तैयार खड़ी थी। अचानक दुश्मन का एक आदमी टीली के पीछे से निकल कर दूसरी जानी दौड़ा। टार्जन की आंखों ने उसका पीछा किया और फिर उसकी राइफल चली और भागने वाला शख्स ढेर हो गया। अब्दुल खुशी से चिल्लाया, मगर दूसरे ही लम्हे दुश्मन की गोली उसके कान छूती हुई निकल गई। अगर टार्जन उसे धक्का देकर परे न फेंकता तो दूसरी गोली अब्दुल का भेजा फाड़ देती। दुश्मनों का घेराव बराबर तंग होता जा रहा था और खतरा था कि उनकी जबरदस्त फायरिंग किसी की जान न ले ले कि अचानक टार्जन हैरतअंगेज फुर्ती के साथ टीले से बाहर निकला। अब टार्जन के दोनों हाथों में दो पिस्तौल थे। देखते ही देखते दुश्मन की एक और आदमी ने अपने घोड़े से कलाबाजी खाई और धम से नीचे गिर पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि गिरने वाला ये शख्स उन बदमाशों का सरदार था। जो ही वो गिरा, बाकी चारों आदमी घोड़ों को दौड़ाते हुए उसी सड़क पर वापस भाग गए जो ईशिया को जाती थी। थोड़ी देर बाद जब गर्द गुबार का बादल खत्म हुआ तो टार्जन ने देखा कि गोलियों का मैं बरसने के बावजूद उनके किसी शख्स के जिस्म पर खराश तक नहीं आई थी। दुश्मन के वो दोनों आदमी मरे पड़े थे और उनके घोड़े अभी तक वहीं भटक रहे थे जिन्हें शेख खजर के आदमियों ने पकड़ लिया। और दो रोज के बाद ये छोटा सा काफिला बूसादी पहुंच गया। यहाँ शेख खजर बिन हजर ने टार्जन को गले लगाया और अपने यहाँ आने की दावत दी।
जी जरूर शेख साहब, जो ही मुझे मौका मिला जरूर आपसे मिल जाऊंगा। और लखनऊ मोहतरम, अपने उस शेर का ख्याल रखना, मैं उससे दो दो हाथ करके बहुत खुश होऊंगा।
हमारे शेर से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। खैर, हमारी तरह वो भी आपका इंतजार करेगा।
जरूर, अच्छा, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
एशिया से बूसादी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत कस्बा था। यहाँ पहुँचते ही टार्जन को मालूम हो गया कि जरनूस और उसके सिपाही कहाँ ठहरे हुए हैं। टार्जन ने एक होटल में कमरा लिया, गुसलखाने में जाकर नहाया और नया लिबास पहनकर खाने के कमरे में आ गया। और जब टार्जन खाने के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने वाली केबिन की तरफ पड़ी जहाँ जरनूस एक यूरोपी अजनबी से चुपके चुपके कुछ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जरनूस और यूरोपी अजनबी होटल से बाहर निकल गए। जरनूस ने टार्जन को नहीं देखा। खाना खाकर टार्जन भी अपने कमरे में आ गया। कुछ दिनों बाद अचानक टार्जन को एक खत मिला। ये खत कई जगहों से घूमता घामता आया था। टार्जन ने लिफाफा खोला। खत के आखिर में डार नोट के दस्तखत थे और लिखा था, अजीज दोस्त टार्जन, एक जरूरी काम के सिलसिले में लंदन चला गया था, वहां 3 दिन रहा। पहले ही रोज तुम्हारे एक पुराने दोस्त फ्लैंडर से मुलाकात हो गई और वह मुझे जबरदस्ती अपने होटल में ले गया और वहीं मैंने उन सबको भी देखा। जरा सोचो, किस किस को? प्रोफेसर पोर्टर को, उनकी बेटी जैन को, और क्या नाम है उस अफशी का, वो जो मिस जैन की खादमा है, खैर वो भी वहां मौजूद थी। इतने में विलियम भी आ गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर फ्लैंडर मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे कि शायद जैन और विलियम की शादी ना हो सके क्योंकि जैन विलियम को पसंद नहीं करती। वो पहले भी 3 मरतबा किसी न किसी बहाने ये शादी टाल चुकी है। अलबत्ता प्रोफेसर साहब की ख्वाहिश है कि जैन विलियम ही से शादी करे क्योंकि वो नवाब है और उसके पास बेअंदाजा दौलत है। उसके बाद उन्होंने तुम्हारा पूछा तो मैंने कहा टार्जन आजकल एक खास मुहिम पर शुमाली अफ्रीका गया हुआ है। जैन ने भी तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत सी बातें की। लेकिन जब मैंने विलियम की तरफ देखा तो उसके चेहरे की बदली हुई रंगत से अंदाजा हुआ कि जैन की जबान से तुम्हारा नाम सुनकर उसे खुशी नहीं हुई। विलियम का एक मालदार दोस्त है टैंक्सटन। वो अपने बहरी जहाज में तफरी के लिए अफ्रीका जाने वाला है और इन लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। विलियम ने मुझसे भी कहा मगर मैंने टाल दिया। और हाँ, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। फकत तुम्हारा दोस्त डार्जन। खत पढ़कर टार्जन ने गहरा सांस लिया और फिर उसका ध्यान उस पुरस्कार यूरोपी अजनबी की तरफ चला गया कि जरनूस से उस अजनबी यूरोपी का क्या ताल्लुक है और वो अजनबी शख्स रहता कहाँ है। टार्जन ने कई बार छुप छुप कर जरनूस की निगरानी की और उसे उस अजनबी से बार बार मुलाकातें करते भी देखा। एक रात उसकी मुलाकात कैप्टन जेराट से खाने की मेज पर हुई।
वेल मिस्टर, लगता है शायद आप लोग बोर हो रहा है। इस इलाका में बड़ा शिकार तू पता नहीं है?
आपका कहना सही है, यहाँ परिंदों और हिरणों के अलावा कोई जानवर दिखाई नहीं देता। सोच रहा हूँ कि जुनूब की तरफ चला जाऊँ। सुना है कि उस इलाके में घने जंगल हैं जिनमें शेर और चीते भी बहुत हैं।
वेल वेल वेरी गुड वेल। अरे भाई, हम लोग तो खुद कल वो जुल्फा की जानब कूद करने वाला है। हेडक्वार्टर से हमको फौरन वहां पहुंचने का ऑर्डर मिला। मैं जनरल और दूसरा अफसर सिपाहियों को लेकर कल जुल्फा की तरफ चल पड़ेंगे। सुना है उधर बागियों ने उधम मचा रखा और मुझको खुद शेर के शिकार का शौक है, शौक है। वही हम दोनों किसी रोज शेर का तलाश में निकलेंगे, समझ गए?
राइट सर। इधर कैप्टन जेरार्ड टार्जन को जुल्फा जाने के बारे में बता रहा था और दूसरी मेज पर जरनूस बैठा जेरार्ड की सारी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था। और फिर उसी रात टार्जन शहर में चहलकदमी करता हुआ जब एक थिएटर के करीब पहुंचा तो उसने जरनूस को 6-7 मकामी बाशिंदों के साथ एक जगह खड़े देखा। जरनूस उन लोगों को कुछ समझा रहा था। एक दो बार गोरी अमरीकी शिकारी के अल्फाज उसके कानों में पड़े तो वो समझ गया कि जरनूस उसी का जिक्र कर रहा है। टार्जन जूं ही टहलता हुआ उन लोगों के करीब पहुंचा, जरनूस उनसे हंस हंस कर बातें करने लगा। फिर वो टार्जन को देखकर आगे बढ़ा और उनसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। जरनूस के जाते ही वो लोग भी इधर उधर खिसक गए, लेकिन टार्जन समझ चुका था कि जरनूस ने इसके खिलाफ एक और खतरनाक साजिश की है और अब उसे चौकन्ना रहकर सफर करना पड़ेगा। फौजी अफसर अपनी कंपनी के सिपाहियों को लेकर सुबह सवेरे ही जुल्फा की जानिब रवाना हो गए। टार्जन जेरार्ड के साथ था। दोपहर को ये लोग एक बस्ती में पहुंचे। बस्ती के शेख ने इन सबको अपने यहां ठहरने की इजाजत देते हुए कैप्टन जेरार्ड से कहा कि रोजाना रात को उसकी बकरियां गायब हो जाती हैं और गड़ेये भी मारे जा चुके हैं। कैप्टन ने सोचा कि शायद ये हरकतें उन्हीं बागियों की हैं जो पहाड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। अगले रोज सुबह उसने कंपनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से की कमान जरनूस को सौंपी और दूसरी अपने हाथ में रखी। उसने टार्जन से पूछा,
वेल, तुम किस पार्टी में शामिल होना मांगता है?
जैसा आप चाहें कैप्टन।
सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लूं।
बिल्कुल अपना पार्टी में शामिल करो। मैं मिस्टर जरनूस, अगर ये तुम्हारा साथ जाना पसंद करता है तो जा सकता।
ओके ओके राइट सर। तो साथियों, मेरा ख्याल है कि बागियों में से बहुत से आदमी इन्हीं पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं। हमें उन्हें घेरे में लेकर या तो अरेस्ट करना होगा या फिर हम उन्हें हलाक कर देंगे। इसलिए आप लोग चारों तरफ फैल जाएं। ओ नो नो मिस्टर, आप नहीं।
जी मैं।
हाँ यस यू। ऐसा करें कि आप यहीं ठहरें और हमारा इंतजार करें। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ।
लेकिन मैं तो आपके साथ इसलिए आया हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। आप मुझे अपना मातहत समझिए।
ओके वेल, तो मिस्टर आपके लिए मेरा ऑर्डर ये है कि आप मेरी वापसी तक इधर ही ठहरें। राइट
राइट सर, आपके आने तक मैं यहीं बैठा हूँ।
सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरबी पहाड़ों की ओट में उतरने लगा और फिर रात हो गई, लेकिन जरनूस का कहीं पता न था। टार्जन चूंकि जरनूस से वादा कर चुका था इसलिए वहीं बैठा रहा, यहां तक कि मशरक की जानिब से रोशनी फूटने लगी। अब टार्जन समझ चुका था कि जरनूस उसे जानबूझकर इस खौफनाक वादी में तन्हा छोड़ गया है, इसलिए अब यहां बैठे रहना हिमाकत ही है। अभी वो 2 फरलांग ही चला होगा कि उसे कई कदमों की आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि वो मुड़कर देखता, एक शीला लपका और टार्जन थम से जमीन पर गिर गया। हमलावर टार्जन के करीब ना आए, शायद वो डरते थे कि उसकी बेहोशी कहीं फरेब ना हो। जब खासी देर हो गई तो उनमें एक आदमी आगे बढ़ा और फिर सीने से कान लगाकर दिल की धड़कन सुनने लगा।
ओह, ये अभी जिंदा है, इसे फौरन खत्म कर दो।
नहीं, जिंदा पकड़ के ले जाएंगे तो इनाम ज्यादा मिलेगा।
हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो।
इतना कहकर उन हमलावरों ने जो कि तादाद में 6 थे, टार्जन को रस्सियों से बांधा और घोड़े पर डालकर ले गए।
लिबास पहना हुआ था।
इनमें से एक शख्स वही यूरोपी था जिसे टार्जन ने बुसादी में जरनूस से कानापुसी करते देखा था। खैमे के अंदर आते ही एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा,
मिस्टर ओकूफ, मेरा ख्याल है कि मैं इसे मारी डालता हूँ।
नहीं मिस्टर पालविच, तुम इस पर हाथ न उठाना, ये मेरा शिकार है। और कुत्ते बाहर तो बड़ी बहादुरी दिखाता है, अब बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? फिर जाओ बुजदिल। कौन, शेख साहबा?
मैं इस बुजदिली की इजाजत नहीं दे सकता कि तुम एक ऐसे शख्स को ठोकरे मारो जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। ना ये शराफत है और ना ही बहादुरी, इससे तो बेहतर है कि तुम इसको गोली मार दो।
मैं इस हकीर शख्स से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। आपकी ये राय मुझे पसंद आई कि मैं इसे गोली मार दूं।
लेकिन खबरदार, तुम मेरे कबीले की हद के अंदर इसे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा इस शख्स से कोई झगड़ा नहीं, इसलिए मैं पसंद नहीं करता कि इसे मेरे इलाके में मारा जाए। ये यहाँ से जिंदा जाएगा, इसके बाद तुम्हें अख्तियार है। मेरे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम मेरे इलाके में ये बुजदिली ना दिखाने पाओ, और अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो याद रखना, ये तुम्हारी गर्दन यहीं काट दी जाएगी।
ठीक है ठीक है, आज की रात ये कैदी यहीं रहेगा, सुबह मैं इसे लेकर आपके इलाके से चला जाऊंगा।
आधी रात गुजर चुकी थी कि यकायक शेर का आवाज सुनकर टार्जन की आंख खुल गई। पहले तो उसने सोचा कि कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन फौरन ही उसे पता चल गया कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। टार्जन ने बाहर खड़े हुए पहरादारों को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मालूम होता था कि सब लोग शेर की आवाज सुनकर भाग गए हैं। शेर के हांफने की आवाजें देर तक टार्जन के कानों में आती नहीं। उसने अंदाजा लगाया कि शेर उसके खैमे से ज्यादा दूर नहीं है। अचानक खैमे की एक दीवार जोर से हिली और टार्जन का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। शेर आन पहुंचा, मगर नहीं, ये तो कोई और जानदार शेर थी। शेर अगर इतना करीब होता तो उसके जिस्म की बूंद जरूर टार्जन के नथनों में पहुंच जाती, लेकिन ये बूंद तो किसी इंसान के जिस्म की थी।
ये दिन के वक्त वो शेख साहब के सामने कुछ न कर सका, और अब आधी रात को आया ताकि चुपके से मुझे खत्म कर सके।
जनाब, क्या सुनते हैं? ये मैं हूँ, मैं वही शेख वजीर की बेटी।
ये तुम हो इतनी रात गए?
जी मैं हूँ। सालिमों ने किस बेदर्दी के साथ आपके हाथ पांव बांध दिए? मैं कुछ देती हूँ, वो कैसे बांधते हैं? ये लीजिए, अब आप आजाद हो गए।
मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं?
खामोशी से मेरी बेटी बच जाएगी, शेर भी करीब कहीं है अपनी शिकार की तलाश में।
हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कैसे पता चला कि बदमाशों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है?
ये बात मुझे मेरे चचा साहब भाई ने बताई, वो इत्तफाक से उस वक्त यहाँ मौजूद था जब ये लोग आपको पकड़ कर लाए। वैसे हमारा इलाका इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है।
अच्छा फिर?
मेरे भाई ने बातों बातों में बताया कि कुछ लोग एक सफेद चमड़ी वाले शख्स को गिरफ्तार करके लाए। बस मैं समझ गई, ये शख्स आपके सिवा कोई नहीं हो सकता। आप भी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं खुद ही घोड़ा लेके इधर आई। यूं रास्ते में शाम हो गई और फिर ये शेर ना जाने कहां से मेरे पीछे लग गया। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैं आप तक जिंदा सलामत पहुंच गई।
मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बहादुर लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर।
अच्छा अच्छा, अब हमें यहाँ से चलने की फिक्र करनी चाहिए। मैं अपने साथ एक और घोड़ा भी लाई हूँ।
एक और घोड़ा? कहाँ है वो?
वो वहाँ दरख्तों के झुंड में, अपने घोड़े के साथ ही बांध दिया। अरे ये क्या?
क्यों, क्या हुआ?
घोड़े तो गायब है। हाय ना, अब क्या होगा?
मेरा ख्याल है तुम्हारे घोड़ों में से एक तो शेर का शिकार बन गया, हाँ हाँ, और दूसरा भाग गया। आओ दूसरे घोड़े को ही तलाश करते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके भागने की खबर दुश्मनों को जाए, दोबारा आपको पकड़ के ले जाए।
तो फिर?
मेरा मतलब है, घोड़ा नहीं मिलता तो ना सही, हम पैदल ही चलते, सुबह तक अपने इलाके में पहुंच जाएंगे, और वहां तो किसी की जरूरत नहीं है कि आपकी तरफ आग उठा के भी देखे।
चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, पैदल ही चलते हैं।
पौ फट रही थी और आसमान का रंग आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होता जा रहा था। अब टार्जन और लड़की दुश्मनों की पहुंच से खासी दूर निकल आए थे और एक बड़े से टीले को उबूर करके जैसे ही दाएं तरफ मुड़े उन्होंने देखा कि 11-12 फीट लंबा एक शेर इत्मीनान से रास्ते के ऐन दरमियान बैठा घोड़े की लाश को उधेड़ रहा है। शेर ने जब अपने सामने दो इंसानों को खड़े पाया तो पहले तो वो हल्की सी आवाज में गुर्राया और फिर उठकर खड़ा हो गया। उसकी तुम आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हरकत कर रही थी। एक बार जैसे कह रहा हूं तुम लोगों को इधर आने और मेरे नाश्ते में खाने डालने की जरूरत क्यों करूंगी। सुनो तुम्हारे पास खंजर है? हाँ खंजर ला लाओ, जल्दी निकालो जल्दी। बस बस अब तुम उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं जरा इस दरिंदे से दो दो हाथ कर लूं। जाओ जाओ जल्दी से उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, अब वो हमला करने ही वाला है। जाओ
शेर बराबर गरज रहा था, शायद उसने महसूस कर लिया था कि उसका दुश्मन मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। शेर का भौंकने का मानिंद हरकत करता हुआ पेड़ जमीन को छूने लगा। उसने बिल्ली किसी अंदाज में गर्दन झुकाई और टार्जन की जानिब जस्ट लगाने की तैयारी करने लगा। टार्जन ने भी वही पोजीशन अख्तियार कर ली जो शेर की थी। शेर ने एक हैबतनाक गरज के साथ छलांग लगाई और टार्जन के ऊपर आ गया। टार्जन उसका हाथ बिजली की तरह तड़पा और फिर खंजर का पूरा फल दस्ते तक शेर की गर्दन में उतर गया। शेर सफी होकर परे चल गया लेकिन उसने टार्जन को छोड़ा नहीं। उसके हलक से डरावनी चीखें निकल रही थी। इंसान और दरिंदा एक दूसरे से उत्था उत्था थे। फिर लड़की ने पत्थर की नोक से देखा कि टार्जन ने जख्मी शेर को अपने दोनों हाथों पर उठाकर सर से ऊंचा किया और पूरी कुव्वत से एक पत्थर पर दे मारा। दरिंदा मछली की तरह तड़पने लगा, उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी। चंद लम्हे तड़पने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ठंडा हो गया। टार्जन ने अपने दुश्मन के मुर्दा जिस्म को टटोला और फिर मुंह खोलकर ऐसा भयानक नारा लगाया कि जमीन का कलेजा हिल गया। उस वो टार्जन नहीं दरिंदा नजर आ रहा था। लड़की उसकी यह हालत देखकर मारे खौफ के बेहोश हो गई। टार्जन ने लड़की को उठाकर कंधे पर डाला और एक जानिब चल पड़ा और टार्जन जब लड़की को कांधे पर डाले एक बस्ती के करीब पहुंचा तो दिन काफी चढ़ चुका था। लड़की अब होश में थी मगर उसका खौफ दूर नहीं हुआ था। उसने लहसती हुई आवाज में कहा,
सुनिए जनाब, ये जो सामने बस्ती नजर आ रही है ना, यही सुल्फा है।
तो तुम होश में आ गई?
जी जी हाँ।
इधर शेख खिजर सख्त परेशान था और अपने नौकरों को बुरा भला कह रहा था कि उन्होंने उसको अकेला क्यों जाने दिया कि इतने में टार्जन लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। लड़की को सही सलामत देखकर शेख खुशी के मारे पागल हो गया और जब लड़की ने सारा किस्सा सुनाया तो शेख का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। उसे यकीन ही ना आता था कि ये नौजवान एक शेर को सिर्फ खंजर से हलाक कर सकता है। शेख ने टार्जन को गले से लगा लिया और कहा,
बखुदा नौजवान, हमने तुम जैसा बहादुर आदमी आज तक नहीं देखा। हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे ही कबीले में शामिल हो जाओ।
शेख साहब, मैंने पहले भी आपको अपनी मजबूरी बताई थी। बात यह है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम से बूस आदि पहुंचना है वरना।
अच्छा, तो फिर कम से कम एक हफ्ता तुम हमारे यहाँ मेहमान जरूर रहोगे, एक हफ्ता।
देखिए शेख साहब, बात यह है कि
अभी का इतना सार है तो रुक जाइए ना।
चलिए, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर मजबूरी है।
इस दौरान में टार्जन ने अपनी खुश अखलाकी और बहादुरी से कबीले के तमाम लोगों के दिल जीत लिए और जब वो उनसे रुखसत होकर बूसादी की जानिब रवाना हो रहा था तो बच्चे, जवान और बूढ़े यूं रो रहे थे जैसे उनका कोई अजीज उनसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो।
शेख साहब, मुझे आपकी ये मेहमान नवाजी जिंदगी भर याद रहेगी। और मोहतरमा,
आपका ये खुलूस मैं हमेशा हमेशा याद रखूंगा।
खुदा आपको हमेशा अपने माने रखे।
आमीन सुमान। अच्छा तो नौजवान, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज कहकर टार्जन ने घोड़े को एड़ लगा दी। अब वो जल्द से जल्द बुसादी पहुंचाना चाहता था। बुसादी में आधी रात हो चुकी थी और मकानों के अंदर तेल और चर्बी से जलने वाली लालटेने और मिशले रोशन थी। टार्जन ने अपना चेहरा नकाब में छुपा लिया और शहर में दाखिल हुआ। शहर के सुनसान रास्तों से गुजरकर टार्जन अपने होटल के पास जा निकला और पिछले दरवाजे से होटल के अंदर चला गया। होटल का मालिक कुर्सी पर बैठा ऊंग रहा था। टार्जन के कदमों की आहट पाकर उसने गर्दन उठाई और फिर उसके हलक से चीख निकल गई।
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ?
खामोश, किसी को ना बताना कि मैं आ गया हूँ, समझे?
समझ गया जनाब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन वो आपकी गैर हाजिरी में कुछ खत आए हैं।
खत कहाँ है वो खत? लाओ,
अभी हाजिर करता हूँ।
ये कहकर होटल के मालिक ने चंद खत टार्जन को दिए। उनमें एक खत बहुत जरूरी था। ये टार्जन के एक अफसर की जानिब से आया था और उसमें लिखा था कि तुम फौरन जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत कैप टाउन पहुंचो। खत में कैप टाउन के उस खुफिया एजेंट का नाम और पता भी दर्ज था जिसके पास टार्जन को जाना था। टार्जन ने फैसला किया कि वो सुबह ही पहला स्टीमर पकड़कर कैप टाउन रवाना हो जाएगा। लेकिन टार्जन का दिल चाहता था कि जाने से पहले जेराड और जरनूस से सुरूर मिलता जाए। कैप्टन जेराड उस वक्त अपने क्वार्टर में पलंग पर लेटा था। टार्जन को अपने सामने देखकर वो उछलकर उससे लिपट गया।
ओ माय बॉय, माय डियर, तुम जिंदा है? मुझे तो बताया गया कि तुमको शेर ने मार डाला, खा गया। वेल, जर्नोस ने जब हमको बताया कि टार्जन को शेर हड़प कर गया तो ओ माय गॉड, टार्जन हमको एकदम पसीना आ गया। बेचारा जर्नोस भी बहुत अपसेट।
बताओ टार्जन, ये क्या बात है?
बात कुछ नहीं कैप्टन, मैं वो रास्ता भूलकर दूसरी तरफ जा निकला था और जर्नोस समझा कि मुझे शेर ने खा लिया है। हाँ, शेर ने मुझ पर हमला जरूर किया था लेकिन मैंने शेर को मार डाला।
ओ थैंक्स गॉड कि तुम वापस आ गया। मैं अभी जर्नोस को बुलाकर ये गुड न्यूज सुनाता।
ना 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 कैप्टन, ना ऐसा ना कीजिए, वो इस वक्त आराम कर रहे होंगे, उन्हें आराम करने दीजिए। हाँ, कल सुबह मैं एक जरूरी काम से केप टाउन जाना चाहता हूँ, आप स्टीमर पर मेरे लिए एक सीट का इंतजाम करा देंगे?
ओके ओके, हम आपका हर खिदमत को तैयार है। एनीथिंग एल्स?
नो सर, थैंक यू वेरी मच।
टार्जन कैप्टन का शुक्रिया अदा करके रुखसत हुआ। अब वो एक गली के अंदर मुड़ गया और एक दो मंजिला मकान के दरवाजे पर रुक गया। उसने अपने दिल में कुछ सोचा और दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया तो वो यूं खुल गया जैसे इशारे का ही मुंतजर था। टार्जन चीते की तरह दबे पांव अंदर घुस गया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे की और दरवाजे की झिरी से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और फिर टार्जन के कानों ने दो आदमियों के चुपके चुपके बातें करने की आवाजें भी सुन ली। टार्जन ने खिड़की के एक सुराख पर आंख लगा दी। जर्नूस और रुकोफ आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे और रुकोफ कह रहा था,
लाओ लेफ्टिनेंट रुपया और वो तमाम कागजात अब तुम मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते ही हो कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। मैंने अपने वादे के मुताबिक टार्जन जैसे शख्स को ठिकाने लगा दिया और इस बुरी तरह उसको तड़पा तड़पा कर मारा है। अब वो जहन्नम की सैर कर रहा होगा।
मिस्टर रुकोफ, कागज में तुमको देने को तैयार है, बट यू नो तुम्हारा गवर्नमेंट हमको रुपया देगा, हमको, फिर तुम हमसे काय को रुपया मांगता है? नो नो मिस्टर रुकोफ, नो।
तुम बहुत भोले हो मिस्टर, तुम्हें इस खतरनाक जेल में पड़ना ही नहीं चाहिए था। सीधे हाथ से रुपया और कागजात मेरे हवाले कर दो वरना मैं जीरावट को बता दूंगा कि तुमने ही टार्जन को कत्ल किया है और मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ।
ओ आई सी, ऐसा बात है, तो ये लो रुपया, रखो अपने पॉकेट में और अब इन फ्यूचर कभी मुझसे तुम बोलना नहीं। अब रहा वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात, तो अपना गवर्नमेंट से बोलो कि किसी गुड मैन आई मीन्स किसी अच्छे आदमी से हमारा बात कराओ, वरना वरना हम ये राज किसी और कंट्री को सेल करेगा। ओके
लेफ्टिनेंट जनरल, बेहतर यही है कि तुम ये कागजात मेरे हवाले कर दो। मैं अपनी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ और मुझे तुमसे बात करने का पूरा पूरा इख्तियार है। मेरी हुकूमत इस बात का इत्मीनान करना चाहती है कि तुम जो हमारे हाथ फ्रांस के फौजी राज फरोख्त कर रहे हो वो सही है या गलत। मुमकिन है तुम हमें धोखा देकर बेकार कागजात दे दो। क्या तुम्हारे पास कुछ सबूत है कि जो राज तुम फरोख्त कर रहे हो वो असली है?
हम पहले से जानता था कि तुम ये बकवास करेगा। ओके ऑलराइट, मैं फॉर सैंपल ये दो पेपर्स लाया हूं, ये तुम अपना गवर्नमेंट को दिखाओ। अगर तो वो कहे ओके तो बाकी का पेपर्स तुम हमको रुपया देकर हमसे लेना। ओके
शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। मैं अपनी हुकूमत से बात करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम इस रुपए में से मुझे कितना हिस्सा दोगे?
तुमको एक पैनी भी नहीं मिलेगा, समझा तुम यू इडियट। अगर तुमने हमसे रुपया मांगने का ट्राई किया तो इस रिवॉल्वर से हम तुम्हारा खोपड़ी में होल कर देगा। ओके नाउ आई एम गोइंग एंड डोंट ट्राई टू फॉलो मी। ओके गुड बाय।
ये कहकर जरनूस बाहर आया और टार्जन फुर्ती से एक सुकून की आड़ में हो गया। और जब जरनूस जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया तो टार्जन ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में दाखिल हो गया। रुकोफ कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही उसने आंखें खोली और फिर टार्जन को देखते ही उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया।
तुम टार्जन?
हाँ मैं। मुझे देखकर तुम्हारी गिग्गी क्यों बन गई?
तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे मार डालने के इरादे से आए हो तो फिर अपना अंजाम भी सोच लो।
मैंने अपना अंजाम खूब सोच रखा है, तुम अपने अंजाम की फिक्र करो। अभी अभी तुम जरनूस को बता चुके हो कि टार्जन मारा जा चुका है, हालांकि मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर कौन यकीन करेगा कि मैंने तुम्हें हलाक किया है? और इसके अलावा मेरी मौजूदगी का यहाँ किसी को इल्म नहीं, और मुझे तुम जैसे नापाक और खबीस आदमी को इस दुनिया से जहन्नम की तरफ रवाना करने में अगर अपनी जान की भी कुर्बानी करनी पड़े तो ये सौदा मुझे मंजूर है।
इस वक्त गुस्से से टार्जन का चेहरा लाल हो रहा था और मुंह से झाग उड़ने लगे थे। टार्जन की शक्ल इतनी हैबतनाक बन गई थी कि रुकोफ खुश्क पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। फिर वो एकदम से उछला और दूसरे कमरे की तरफ भागा, लेकिन टार्जन ने उसे मौका ना दिया। एक जोरदार घूंसा रुकोफ की कनपट्टी पर पड़ा और उसकी आंखों के सामने चिंगारियां सी उड़ने लगी। वो चरखे की तरह घूम गया और टार्जन के कदमों में आन पड़ा। टार्जन ने बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जो चूहे को मुंह में दबा लेती है रुकोफ का गला पकड़ लिया और उठाकर दोबारा कुर्सी पर बिठाते हुए कहा,
अभी मैंने तुमको हल्का सा मजा चखाया है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इतना ही काफी है। अब तुम वो दोनों कागज मेरे हवाले कर दो जो चंद मिनट पहले तुमने जरनूस से हासिल किए थे। शाबाश, और अब वो नोटों की गड्डी भी मेरे हवाले कर दो, मुझे आजकल पैसों की सख्त जरूरत है। इनकार करोगे तो अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। मेरा घूसा ऐसा नहीं जिसे तुम भूल सको। निकालो निकालो। शाबाश, गुड, वेरी गुड। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई हरकत की तो हड्डी पस्ती तोड़ कर रख दूंगा।
इतना कहकर टार्जन रुकोफ को उसी तरह निठाल छोड़कर बाहर चला गया। अगले रोज सुबह टार्जन अपने नए सफर पर रवाना होने के लिए होटल से निकला। इससे पहले वो कैप्टन जेरार्ड से कैपटाउन की बंदरगाह के एक अफसर के नाम सिफारशी खत लिखवा चुका था। फौजी अफसरों के क्वार्टरों के आगे से गुजरते हुए यकायक टार्जन की निगाह जरनूस पर पड़ी। जरनूस ने भी टार्जन को देखा तो यकायक टार्जन का हाथ सैल्यूट के लिए उठ गया। जवाब में जरनूस ने भी बेसोचे समझे हाथ उठा दिया, लेकिन उसका चेहरा दहशत से हल्दी की तरह जर्द था। और टांगे भी कांप रही थी। ऐसा मालूम होता था कि वो खौफ के मारे मर जाएगा। फिर वो जल्दी से मुड़ा और अपने क्वार्टर के अंदर चला गया। और जब कैप्टन जेरार्ड टार्जन को सियाफ करने स्टीमर पर आए तो उन्होंने टार्जन से कहा,
वेल टार्जन, तुमने वो बैड न्यूज तो सुन लिया हो।
कौन सा न्यूज कैप्टन?
हाँ, अभी मुझे ये बैड न्यूज मिला है कि लेफ्टिनेंट जर्नोस ने अपना सर में गोली मारकर सुसाइड कर।
ओह, वेरी सैड, वेरी सैड।
ओके टार्जन, विश यू ऑल द बेस्ट।
ओके सर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।
टार्जन पहले अलजजीरा पहुंचा, जो मुल्क अलजजायर का दारुलहुकूमत है, क्योंकि यहीं से बहरी जहाज जुनूबी अफ्रीका जाते हैं। यहां आकर मालूम हुआ कि जहाज दो दिन के बाद जाएगा। टार्जन ने मौके से फायदा उठाकर न सिर्फ आराम किया बल्कि पेरिस की खुफिया पुलिस को भेजने के लिए रिपोर्ट भी तैयार कर ली। लेकिन उसने वकूफ से हासिल किए हुए वो कागजात इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए थे। उसने सोचा कि मैं खुद पेरिस जाकर खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को पेश करूंगा। और दो रोज बाद टार्जन जब बैरी जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो अर्शी के एक कोने में खड़े हुए दो पुरस्कार आदमी उसे गौर से देख रहे थे। उन दोनों ने चुपके चुपके कुछ बातें की और अपनी टोपियां चेहरों पर झुका कर दूसरी जानिब चले गए। खुफिया पुलिस के अफसर की हिदायत के मुताबिक कैपटाउन तक टार्जन को नकली नाम से सफर करना था, इसलिए उसने जहाज की सीट जॉन के नाम से हासिल की थी। और रात के खाने पर जब जहाज के मुसाफिर खाने के कमरे में आए तो टार्जन को एक लड़की के बराबर वाली कुर्सी मिली। उसके दाएं हाथ पर जहाज का कप्तान बैठा था। खाने से पहले कप्तान ने उस लड़की को टार्जन से मिलवाया।
ओवल, आप मिस्टर जॉन हैं?
हेलो।
हेलो।
और आप मिसेस स्ट्रॉन्ग तफरी के लिए जुनूबी अफ्रीका आई हैं?
बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर जॉन।
सेम टू यू मिस।
प्लीज हैव समथिंग, आप कुछ लीजिए ना।
यस यस यस, अभी लीजिए।
ओह यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
दूसरे रोज दोपहर के वक्त टार्जन जहाज के अर्शे के कटहरे के साथ लगा खड़ा था कि उसने दूर एक छोटा सा सफेद जहाज देखा। उस छोटे से सफेद रंग के जहाज के अर्शे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी टार्जन के जहाज को गौर से देख रही थी। उसके गले में सोने का लॉकेट था जिससे उसकी उंगलियां खेल रही थी। दो तीन मुलाकातों में टार्जन और मिस स्ट्रॉन्ग आपस में घुल मिल गए। एक दिन बातों बातों में टार्जन ने कहा,
एक मर्तबा मेरी मुलाकात एक अमरीकी खानदान से हुई थी। उन लोगों की याद अब भी मेरे दिल में बाकी है। शायद आप भी कभी उनसे मिली हो, प्रोफेसर पोर्टर, उनकी लड़की
जीन पोर्टर। ओह, क्या आप उनको जानते हैं? जीन तो मेरा बचपन का फ्रेंड है, बट यू नो अब वो हमसे बिछड़ने वाला है।
क्यों? हाँ, मैं समझ गया। जैन की शादी होने वाली है और शादी के बाद जैन इंग्लिस्तान चली जाएगी।
यू आर राइट, यही बात है। लेकिन एक और बात भी है, जैन का मैरिज ऐसे आदमी से हो रहा है जिसे जैन बिल्कुल लाइक नहीं करती।
जैन लाइक नहीं करती, वो क्यों?
जैन किसी और को लव करता है।
अच्छा, किससे लव करता है? तुमने देखा है उसे?
नहीं, हम तो उसको नहीं देखा, ना उसके लवर से मिला। बट यू नो, जेन उसका बहुत तारीफ करता है। जेन बोलता है वो शेर से भी बड़ा ताकत वाला है।
अच्छा?
हाँ मिस्टर जॉन, जेन बोलता वो अफ्रीका के जंगल में पैदा हुआ था और उधर ही दरिंदों के साथ रहकर जवान हुआ है। और प्रोफेसर पोर्टर और जेन का मुलाकात उधर अफ्रीका के जंगल में हुआ था।
मिस स्ट्रॉन्ग और टार्जन अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके बराबर से एक दाढ़ी वाला शख्स गुजरा, जिसने टार्जन को देखते ही जल्दी से गर्दन झुकाकर मिस स्ट्रॉन्ग को सलाम किया और एक तरफ चल पड़ा।
ठहरिए मिस्टर थॉरिन, जस्ट अ मिनट, मैं आपको मिस्टर जॉन से मिलवाऊं। वैसे भी पैसेंजर्स को एक दूसरे से जरूर मिलना चाहिए। ओके, मीट मिस्टर जॉन।
हेलो। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई मिस्टर थॉरिन। स्ट्रॉन्ग ये तो मेरे पुराने वाकिफ हैं, इनसे मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ।
ओके मिस्टर जॉन, ओके, अगर ये आपका ओल्ड फ्रेंड है तो फिर इट्स ऑल राइट, आप बात करो, मैं चाहती है। बाय मिस्टर जॉन।
ओके बाय। मैंने तुमको पहचान लिया है मिस्टर रोकोफ। तुम क्या समझते हो कि ये दाढ़ी रखकर तुम अपने आप को छुपा सकोगे? नहीं मिस्टर रोकोफ, नामुमकिन।
बताओ तुम यहाँ किस इरादे से आए हो, बताओ।
कुछ नहीं, मैं तो अपने वतन जा रहा हूँ। अब आप कभी भी मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे।
नहीं मिस्टर, मुझे शक है कि तुम कोई नई शरारत करने वाले हो। तुम्हारा इस जहाज पर सफर करना जरूर कोई माने रखता है। खैर, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ मिस्टर रोकोफ, अगर तुमने कोई शरारत की तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा।
देखिए मिस्टर, आप हद से बढ़ रहे हैं। आप मुझे धमकियां देने वाले होते कौन हैं? मुझे भी जहाज पर सफर करने का उतना ही हक है जितना आपको। अगर मैं फर्जी नाम से सफर कर रहा हूँ तो क्या हुआ? आपने भी तो फर्जी नाम इख्तियार कर रखा है।
तुम जहन्नम में जाओ, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मुझसे तुम दूर रहना, समझे?
रुकोफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन टार्जन को घूरने के सिवा कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकला। वो जानता था कि टार्जन के अल्फाज खाली धमकी ही नहीं होते, वो उन पर अमल भी कर सकता है। वो बल खाकर मुड़ा और अपने केबिन में चला गया, जहां उसका साथी पालविच था। उसने पालविच को सारा कुस्सा सुनाया। पालविच ने गुस्से से कहा,
सर मैं उसको आयदात ही समंदर में फेंक देगा।
लेकिन पहले उससे कागजात हासिल करना जरूरी है। तुम किसी बहाने उसके केबिन की तलाश लो।
हम अभी जाता है सर, इसी वक्त उसके केबिन में घुसने का मौका मिल जाएगा सर।
लेकिन जरा होशियारी से।
ओके सर, ओके।
पालविच टार्जन के केबिन की निगरानी कर ही रहा था कि उसने देखा टार्जन अपने केबिन से बाहर आया और दरवाजे को ताला लगाए बगैर अर्शे की तरफ चला गया। पालविच ने फौरन ही रुकोफ को खबर दी और खुद टार्जन के केबिन में दाखिल हो गया। बाहर रुकोफ पहरा दे रहा था कि टार्जन आ जाए तो सीटी बजाकर पालविच को खबरदार कर दे। पालविच ने बड़ी होशियारी से टार्जन की एक एक चीज को देखना शुरू किया। आखिर उसकी नजरें एक कोट पर पड़ी। उसने कोट की जेब में हाथ डाला और सफेद रंग का एक लिफाफा निकाल लिया और बाहर आ गया। रुकोफ ने लिफाफा खोलकर कागजात देखे तो पालविच को गले से लगा लिया और अब वो आइंदा प्रोग्राम पर गौर कर रहे थे। पालविच कह रहा था,
सर टार्जन को बहुत जल्द इन कागजात का पता चल जाएगा और वो तुम्हें पहचान चुका है, इसलिए उसका शक कम पाई जाएगा सर।
कोई परवाह नहीं, मैं आज ही रात उसका कच्चा खत्म कर दूंगा और फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
वो रात बड़ी तारीख और डरावनी थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और समंदर में तूफान आया हुआ था। जहाज खिलौने की मानिंद लहरों के ऊपर उछल था, डगमगा था, अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा था। टार्जन खाना खाकर अर्शे की तरफ आ गया। अर्शा उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। मुसाफिर अपने अपने केबिनों में आराम कर रहे थे। इस तूफानी और तारीख रात में भला कौन सा आदमी किया? टार्जन अर्शे के कटहरे के साथ लगकर खड़ा हो गया और समुद्र की लहरों का तमाशा देखने लगा। अचानक दो आदमी अपने केबिन से दबे पांव बाहर निकले। इन दोनों ने स्याह रंग के ओवरकोट पहने हुए थे और इनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। फूक फूक का कदम रखे हुए ये दोनों टार्जन की तरफ बढ़े और इससे पहले कि टार्जन को खबर हो वो दोनों उस पर टूट पड़े। इन दोनों ने टार्जन की दोनों टांगे पकड़ी और आनंद फानंद से समंदर में फेंक।
इसके बाद क्या हुआ? टार्जन समंदर की तूफानी लहरों में कब तक घिरा रहा? टार्जन ने अपनी आंख को समंदर की तूफानी लहरों से किस तरह बचाया? ये सब हालात जानने के लिए सुनिए टार्जन की वापसी का दूसरा हिस्सा।